नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज संसद भवन परिसर में मतदान होगा। मतगणना आज शाम 6 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति का आकलन करने और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम आज 8 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। नेपाल सरकार ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटाया। प्रदर्शन में 19 की मौत और 300 से अधिक घायल। भारत ने ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर CAFA नेशंस कप फुटबॉल में कांस्य पदक जीता और 17वां एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू। पहला मुकाबला अबुधाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान और मतगणना आज होगी। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। एक रिपोर्ट।
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और वे संबंधित पार्टी के व्हिप से बाध्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव नए संसद भवन में आयोजित होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। आधार कार्ड को बिहार में संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पहचान के एक प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। वे दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति का आकलन और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला पहुंचेंगे और वहां राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे बाढ़ से प्रभावित स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी NDRF, SDRF और जमीन पर कार्य कर रहे आपदा मित्र दलों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का विमान से सर्वेक्षण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बीच राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और धर्मशाला व इसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। गग्गल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान को लेकर धर्मशाला में राज्य सरकार के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से आपदा को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी जाएगी ताकि प्रदेश को आपदा राहत पैकेज मिल सके। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उधर हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी विमान से सर्वेक्षण करेंगे। वे शाम 4:15 के करीब गुरदासपुर पहुंचेंगे और बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री गुरदासपुर में NDRF, SDRF और आपदा मित्र दल से मिलेंगे तथा बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजाब में अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है।
पंजाब धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। यह स्थिति कई जिलों को प्रभावित कर रही है और ताजा जानकारी के अनुसार मानवीय और फसल दोनों तरह के नुकसान में वृद्धि देखी गई है। बाढ़ से 15 जिलों के 3,87,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 1,84,000 हेक्टेयर जमीन पर फसलों को नुकसान हुआ है। 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बाढ़ ने 51 लोगों की जान भी ले ली है। पर्यावरणविद और राज्यसभा सदस्य बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा है कि बाढ़ से राहत पाने के लिए हमें प्रकृति के करीब जाना होगा और नदियों के मैदानों को नदियों के लिए ही छोड़ना होगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
इस बीच मौसम विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तेलंगाना में गरज और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी वीणा राम गुलाम आज से 16 सितंबर तक 8 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। एक रिपोर्ट।
वर्तमान कार्यकाल में ये भारत में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। डॉक्टर राम गुलाम इससे पहले मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राम गुलाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर राम गुलाम मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। मुंबई में वे एक व्यापारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 19 लोगों की मौत हुई जबकि 300 से अधिक घायल हुए। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने बताया कि मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद सरकार ने सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध का फैसला वापस लिया। 3 दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था क्योंकि ये नेपाल सरकार के साथ पंजीकृत नहीं थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसक विरोध प्रदर्शन की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी और घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी नीति पर अडिग है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 6वां दौर कल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, शिक्षा, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन, खेल और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय पहलुओं की समीक्षा की। परामर्श का अगला दौर वेलिंगटन में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि व्यापार पैटर्न और बाजार पहुंच वैश्विक आर्थिक चर्चा में प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने सतत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले वस्तु और सेवा कर में नए सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र के लिए किए गए सुधारों को बताएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि जीएसटी में सुधार आम आदमी पर केंद्रित है और 22 सितंबर से लागू होंगे।
सौंदर्य वस्तुओं पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम तथा लोशन, टूथपेस्ट, टेलकम पाउडर और फेस पाउडर जैसे रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। वहीं टूथ पाउडर पर भी जीएसटी दर 12% से घटकर 5% हो गई है। जीएसटी में इन सुधारों से अब सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं उपभोक्ताओं को काफी किफायती दर पर मिलेंगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उपभोक्ताओं ने जीएसटी में हुए सुधार का स्वागत किया है।
मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं घर से बाहर रह रही हूँ, तो हमारी एक फिक्स पॉकेट मनी होती है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें लेने होती है, हमारा एसेंशियल आइटम जैसे शैम्पू, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर और मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तो हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जीएसटी ड्रॉप होने से हमें बहुत फायदा हुआ है जिससे हमारी पॉकेट मनी बचेगी।
जीएसटी परिषद के इस कदम से भारत के सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। रोहन के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तेलंगाना इकाई के लिए 22 पदाधिकारियों की घोषणा की है। पार्टी ने 8 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 8 सचिव और अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुमोदन के बाद कल शाम पदाधिकारियों की सूची की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जांच करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों को अपने अपने मंडल में विशेष जांच दल का गठन करने का निर्देश दिया है। समिति 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक संस्थान को एक हलफनामे में घोषित करना होगा कि वो केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है जिन्हें संबंधित नियामक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
जी निखिल, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। CAFA नेशंस कप फुटबॉल में भारत ने तजाकिस्तान के हिलोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए मैच में ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता। ये पहली बार है जब भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान को हराया। और निखिल, अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। 17वां एशिया कप टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। पहले मैच में आज ग्रुप बी में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत का पहला मैच कल ग्रुप ए में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है, तथा ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। भारत का ग्रुप स्तर का आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से होगा। टूर्नामेंट का सुपर फोर चरण 20 सितंबर से शुरू होगा। दोनों ग्रुप की शीर्ष टीमें 28 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए 3-3 मैच खेलेंगी। इसके अलावा हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय और आयुष शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिन्हें खेल खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही।
धन्यवाद मुकेश। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है जया भारती।
धन्यवाद निखिल। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज होने वाला चुनाव का समाचार अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, देश को आज मिलेंगे 17वें उपराष्ट्रपति। जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर और अमर उजाला की सुर्खी है, मतदान में शामिल नहीं होंगे भारत राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल। नवभारत टाइम्स का अनुमान है, संख्या बल के हिसाब से NDA का दावा मजबूत। नेपाल में कल हुई हिंसा को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका और हरिभूमि की सुर्खी है, डिजिटल स्पेस से सड़कों पर उतरा युवाओं का विरोध। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, GST कटौती के बाद गाड़ियों के दाम में कमी का ऐलान जारी। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की सुर्खी है, वाहनों की खुदरा बिक्री 2.84% बढ़ी। वीर अर्जुन के अनुसार, भारत का इसराइल के साथ निवेश समझौता, निवेशकों को दी छूट। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, मनी गेम पर बैन के बाद गेमिंग UPI खर्च 26% घटा। देशबंधु ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से लिखा है, राष्ट्र प्रथम की भावना से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, दिवाली से पहले शुरू होगी दिल्ली पटना रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, हरियाणा में बारिश, बाढ़ से मौत पर 4 लाख मुआवजा।
धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज संसद भवन परिसर में मतदान होगा। वहीं मतगणना आज शाम 6 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति का आकलन करने और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम आज 8 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। नेपाल सरकार ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटाया। प्रदर्शन में 19 की मौत और 300 से अधिक घायल। भारत ने ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर CAFA नेशंस कप फुटबॉल में कांस्य पदक जीता। और 17वां एशिया कप क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला अबुधाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।